मरकुस अध्याय 14। फसा पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव आने से दो दिन पहले की बात है कि प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ उसे बंदी बनाया जाए और मार डाला जाए। वे कह रहे थे,
किंतु यह हमें पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई फसाद खड़ा करे।
जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के एक पात्र में शुद्ध बाल छड़ का इत्र लिए आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। इससे वहां कुछ लोग बिगड़कर आपस में कहने लगे,
इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई है? यह इत्र 300 दिनारी से भी अधिक में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को कंगालों में बांटा जा सकता था।
उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। तब यीशु ने कहा,
उसे क्यों तंग करते हो? छोड़ो उसे, उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है, क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस स्त्री ने वही किया जो वह कर सकती थी, उसने समय से पहले ही गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर सुगंध छिड़क कर उसे तैयार किया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी।
तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजक के पास यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए गया। वे उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धन देने का वचन दिया। इसलिए फिर यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से एक दिन पहले, जब फसा मेमने की बलि दी जाया करती थी, उसके शिष्यों ने उससे पूछा,
तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी करें?
तब उसने अपने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा,
नगर में जाओ, जहां तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए मिले उसके पीछे हो लेना, फिर जहां कहीं भी वह भीतर जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है भोजन का मेरा वह कमरा कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का खाना खा सकूं, फिर वह तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सजा सजाया तैयार कमरा दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो।
तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उनसे यीशु ने कही थी। तब उन्होंने फसा का खाना तैयार किया है। दिन ढले, अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा,
मैं सत्य कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा।
इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे,
निश्चय ही वह मैं नहीं हूँ।
तब यीशु ने उनसे कहा,
वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। मनुष्य के पुत्र को तो जाना ही है जैसा कि उसके बारे में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि वह पैदा ही न हुआ होता।
जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और उसे उनको देते हुए कहा,
लो यह मेरी देह है।
फिर उसने कटोरा उठाया, धन्यवाद किया और उसे उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। तब यीशु बोला,
यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा का आरंभ है, यह बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब मैं उस दिन तक दाख मधु को चखूंगा नहीं जब तक परमेश्वर के राज्य में नया दाख मधु न पीऊं।
तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा,
तुम सबका विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गड़ेरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा।
तब पतरस बोला,
चाहे सब अपना विश्वास खो बैठे पर मैं नहीं खोऊंगा।
इस पर यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझे नकार चुकेगा।
इस पर पतरस ने और भी बल देते हुए कहा,
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नकारूंगा नहीं।
तब बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। फिर वे एक ऐसे स्थान पर आए जिसे गतसमने कहा जाता था। वहां यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तुम यहीं बैठो।
और पतरस, याकूब और यूहन्ना को वह अपने साथ ले गया। वह बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा था। उसने उनसे कहा,
मेरा मन दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम यहीं ठहरो और सावधान रहो।
फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। फिर उसने कहा,
हे परम पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, इस कटोरे को मुझसे दूर कर, फिर जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वह नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही कर।
फिर वह लौटा तो उसने अपने शिष्यों को सोते देखकर पतरस से कहा,
शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग नहीं सका? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो चाहती है किंतु शरीर निर्बल है।
वह फिर चला गया और वैसे ही वचन बोलते हुए उसने प्रार्थना की। जब वह दोबारा लौटा तो उसने उन्हें फिर सोते पाया। उनकी आंखों में नींद भरी थी, उन्हें सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या उत्तर दें। वह तीसरी बार फिर लौट कर आया और उनसे बोला,
क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? अच्छा तो सोते रहो, वह घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों सौंपा जा रहा है। खड़े हो जाओ, आओ चलें, देखो यह आ रहा है, मुझे धोखे से पकड़वाने वाला व्यक्ति।
यीशु बोल ही रहा था कि उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा वहां दिखाई पड़ा। उसके साथ लाठियां और तलवारें लिए एक भीड़ थी, जिसे याजकों, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भेजा था। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत बता रखा था,
जिसे मैं चूमू वही वह है, उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना।
सो जैसे ही यहूदा वहां आया उसने यीशु के पास जाकर कहा,
रब्बी,
और उसे चूम लिया। फिर तुरंत उन्होंने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। उसके एक शिष्य ने, जो उसके पास ही खड़ा था, अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के एक दास पर चला दी, जिससे उसका कान कट गया। फिर यीशु ने उनसे कहा,
क्या मैं कोई अपराधी हूँ जिसे पकड़ने तुम लाठी तलवार लेकर आए हो? हर दिन मंदिर में उपदेश देते हुए मैं तुम्हारे साथ ही था, किंतु तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब यह हुआ ताकि शास्त्र का वचन पूरा हो।
फिर उसके सभी शिष्य उसे अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। अपनी वस्त्र रहित देह पर चादर लपेटे एक नौजवान उसके पीछे आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, किंतु वह अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग खड़ा हुआ। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते हुए उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और वहां पहरेदारों के साथ बैठकर आग तापने लगा। सारी यहूदी महासभा और प्रमुख याजक यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई प्रमाण ढूंढने का यत्न कर रहे थे पर ढूंढ नहीं पाए। बहुतों ने उसके विरोध में झूठी गवाहियां दी पर वे गवाहियां आपस में विरोधी थीं। फिर कुछ लोग खड़े हुए और उसके विरोध में झूठी गवाही देते हुए कहने लगे,
हमने इसे यह कहते सुना है, मनुष्यों के हाथे बने इस मंदिर को मैं ध्वस्त कर दूंगा और फिर 3 दिन के भीतर दूसरा बना दूंगा जो हाथों से बना नहीं होगा।
किंतु इसमें भी उनकी गवाहियां एक सी नहीं थी। तब उनके सामने महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा,
ये लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाहियां दे रहे हैं? क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना?
इस पर यीशु चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा,
क्या तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है?
यीशु बोला,
मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों में आते देखोगे।
महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा,
हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? तुमने ये अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना, अब तुम्हारा क्या विचार है?
उन सब ने उसे अपराधी ठहराते हुए कहा,
इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए।
तब कुछ लोग उस पर थूकते, कुछ उसका मुंह ढकते, कुछ घूंसे मारते और कुछ हंसी उड़ाते कहने लगे,
भविष्यवाणी कर।
और फिर पहरेदारों ने पकड़कर उसे पीटा। पत्रस अभी नीचे आंगन ही में बैठा था कि महायाजक की एक दासी आई। जब उसने पत्रस को वहाँ आग तापते देखा तो बड़े ध्यान से उसे पहचान कर बोली,
तू भी तो उस यीशु नाजरी के ही साथ था।
किंतु पत्रस मुकर गया और कहने लगा,
मैं नहीं जानता या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है।
यह कहते हुए वह डेवड़ी तक चला गया और मुर्गी ने बांग दी। उस दासी ने जब उसे दोबारा देखा तो वहाँ खड़े लोगों से फिर कहने लगी,
यह व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है।
पतरस फिर मुकर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े लोगों ने पतरस से कहा,
निश्चय ही तू उनमें से एक है क्योंकि तू भी गलील का है।
तब पतरस अपने को धिक्कारने और कस्मे खाने लगा,
जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता।
तत्काल मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को उसी समय वे शब्द याद हो आए जो उससे यीशु ने कहे थे,
इससे पहले कि मुर्गा 2 बार बांग दे तू मुझे 3 बार नकारेगा।
तब पतरस जैसे टूट गया, वह फूट फूट कर रोने लगा।